नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट। जीन किम का 2000 में प्रकाशित व्यावसायिक उपन्यास है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल बदलाव और बड़े संगठनों की कार्य संस्कृति पर केंद्रित है। यह द फीनिक्स प्रोजेक्ट की घटनाओं के समानांतर चलता है, लेकिन दृष्टि संचालन प्रबंधन की नहीं बल्कि डेवलपर्स की है। कहानी पार्ट्स अनलिमिटेड नामक पुरानी कंपनी में वरिष्ठ डेवलपर और आर्किटेक्ट मैक्सिन चैम्बर्स के अनुभवों के माध्यम से आगे बढ़ती है। एक विफल पेरोल घटना के बाद उसे फीनिक्स प्रोजेक्ट में भेज दिया जाता है, जहां वह जटिल निर्भरताओं, तकनीकी ऋण, मंजूरी केंद्रित प्रक्रियाओं और अलग अलग टीमों की बाधाओं को देखती है। किम कथा को प्रबंधन पाठ की तरह इस्तेमाल करते हैं। पुस्तक का केंद्रीय ढांचा 5 आइडियल्स है, जो सरलता, काम का प्रवाह, रोजमर्रा के सुधार, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और ग्राहक केंद्रिता को जोड़ता है। इसका उद्देश्य केवल तेजी से कोड लिखना नहीं, बल्कि ऐसी तकनीकी व्यवस्था समझाना है जिसमें इंजीनियर गुणवत्ता, सीखने और ग्राहक मूल्य के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सके। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, लोकैलिटी और सरलता से निर्भरताओं का बोझ घटाना पुस्तक का पहला आदर्श लोकैलिटी और सरलता उस स्थिति पर प्रहार करता है, जिसमें एक छोटा बदलाव करने के लिए डेवलपर को अनेक टीमों, पुराने सिस्टमों, साझा डेटाबेसों और अनुमोदन प्रक्रियाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। पार्ट्स अनलिमिटेड में काम की गति केवल व्यक्तिगत क्षमता से नहीं रुकती, बल्कि उस व्यवस्था से रुकती है जिसमें किसी भी परिवर्तन का कारण और प्रभाव अलग अलग स्थानों पर फैला होता है। मैक्सिन के अनुभव दिखाते हैं कि जटिलता अक्सर अनिवार्य तकनीकी कठिनाई नहीं होती, बल्कि वर्षों के अस्थायी समाधानों, अस्पष्ट स्वामित्व और परत दर परत बने नियंत्रणों का परिणाम होती है। लोकैलिटी का अर्थ है कि टीम के पास अपने काम को समझने, बदलने, जांचने और चलाने के लिए पर्याप्त नियंत्रण और संदर्भ हो। सरलता का अर्थ केवल कम कोड नहीं, बल्कि कम छिपी हुई निर्भरताएं, स्पष्ट सीमाएं और समझने योग्य प्रणालियां हैं। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि तकनीकी ऋण वित्तीय ऋण जैसा है। शुरुआत में वह तेज दिखने वाला रास्ता देता है, लेकिन बाद में हर बदलाव पर ब्याज वसूलता है। इसलिए सुधार का व्यावहारिक आरंभ उन हिस्सों को पहचानने से होता है, जहां छोटी मांगे भी असामान्य समन्वय मांगती है। टीमों को स्वामित्व स्पष्ट करना, इंटरफेस सीमित करना और पुराने घटकों को क्रमशः अलग करना होता है। इस दृष्टि में आर्किटेक्चर संगठनात्मक स्वतंत्रता का आधार बनता है, केवल तकनीकी सौंदर्य का विषय नहीं। दूसरा, फोकस। फ्लो और जॉय को डेवलपर उत्पादकता का आधार मानना दूसरा आदर्श, फोकस, फ्लो और जॉय, इस प्रचलित धारणा को चुनौती देता है कि व्यस्तता ही उत्पादकता है। पुस्तक में डेवलपर्स का समय बैठकों, तात्कालिक अनुरोधों, टिकटों, स्थिति रिपोर्टों और लगातार बदलती प्राथमिकताओं में टूटता रहता है। परिणाम यह होता है कि महत्वपूर्ण काम शुरू तो होता है, पर पूरा नहीं हो पाता। किम के अनुसार, जटिल समस्या हल करने के लिए लंबे, अविच्छिन्न ध्यान की जरूरत होती है। फ्लो वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या के संदर्भ, विकल्पों और परिणामों को एक साथ पकड़कर सार्थक प्रगति कर सकता है। हर बाधा के बाद संदर्भ दोबारा बनाने की लागत लगती है, जो साधारण समय हानि से कहीं अधिक है। जॉय का अर्थ सतही मनोरंजन या सुविधाएं नहीं है, यह सक्षम होने, उपयोगी काम पूरा करने, कौशल बढ़ाने और अपने निर्णयों का प्रभाव देखने की अनुभूति है। जब इंजीनियरों को केवल आदेश पालन करने वाले संसाधन की तरह रखा जाता है, तो उनकी विवेकशीलता और जिम्मेदारी दोनों घटती हैं। पुस्तक इसलिए सीमित कार्याधीन काम, स्पष्ट प्राथमिकताएं और अनावश्यक व्यवधानों में कमी का समर्थन करती है। इसका व्यावहारिक निहितार्थ यह है कि नेता हर नई मांग को तत्काल शुरू करने के बजाय यह पूछें कि वर्तमान काम किस चीज से रुका है और किस काम को वास्तव में पहले पूरा करना चाहिए। तेज डिलीवरी अधिक लोगों को दबाव में डालने से नहीं, बल्कि काम को लगातार आगे बढ़ने देने से आती है। तीसरा, दैनिक काम में सुधार को तकनीकी ऋण के विरुद्ध नियमित निवेश बनाना। तीसरा आदर्श, दैनिक काम में सुधार, पुस्तक का सबसे संचालनात्मक संदेश है। पार्ट्स अनलिमिटेड की समस्याएं किसी एक बड़ी विफलता तक सीमित नहीं है, वे उन छोटे छोटे अवरोधों से बनती है जिन्हें लोग हर दिन पार करते हैं, जैसे अविश्वसनीय परीक्षण, धीमे बिल्ड, मैनुअल रिलीज, अस्पष्ट दस्तावेज और बार बार होने वाले उत्पादन दोष। यदि टीम केवल फीचर डिलीवरी को काम माने और इन बाधाओं को बाद के लिए टाल दी रहे, तो काम की प्रणाली धीरे धीरे अधिक महंगी, जोखिमपूर्ण और धीमी बनती जाती है। पुस्तक सुधार को अलग, कभी कभार चलने वाली पहल नहीं मानती। इसका तर्क है कि जो लोग काम करते हैं, उन्हें काम करने की प्रणाली बेहतर बनाने का अधिकार, समय और जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। यह दृष्टि तकनीकी ऋण को केवल इंजीनियरिंग की निजी चिंता नहीं रहने देती, क्योंकि उसका असर ग्राहक अनुभव, लागत, विश्वसनीयता और बाजार में प्रतिक्रिया की गति पर पड़ता है। व्यावहारिक रूप से सुधार का अर्थ स्वचालित परीक्षण बढ़ाना, दोहराए जाने वाले हस्तचालित कदम हटाना, दोषों के मूल कारण देखना और सीख को टीमों में साझा करना हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुस्तक बड़े पुनर्लेखन को अकेला समाधान नहीं बताती। छोटे सतत सुधार जोखिम कम करते हैं और टीम को अपने वातावरण पर नियंत्रण लौटाते हैं। इस तरह डिलीवरी और सुधार परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं बल्कि एक दूसरे की शर्त बन जाते हैं। चौथा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से दोषारोपण के बजाय सीखने की संस्कृति बनाना। चौथा आदर्श, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा संगठन में बोलने और सीखने की वास्तविक परिस्थितियों को सामने लाता है। कहानी की शुरुआत में मैक्सन को पेरोल समस्या के लिए दोषी ठहराया जाता है, जबकि व्यापक सिस्टम संबंधी कारणों को समझने के बजाय किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना अधिक आसान माना जाता है। यह प्रसंग दिखाता है कि दोषारोपण तत्काल जवाब तो देता है लेकिन भविष्य की विफलताओं के कारणों को छिपा देता है। जब लोगों को अपमान, दंड या करियर नुकसान का भय हो, वे जोखिम, कमियां और बुरी खबरें देर से साझा करते हैं। तब नेतृत्व को वास्तविक स्थिति तब पता चलती है जब नुकसान बड़ा हो चुका होता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का अर्थ जवाबदेही समाप्त करना नहीं है, इसका अर्थ है कि टीम सदस्य तथ्य, संदेह, गजदिया और असहमति बिना व्यक्तिगत हमले के रख सके। पुस्तक के संदर्भ में यह विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि जटिल सॉफ्टवेयर प्रणालियों में कोई एक व्यक्ति पूरे तंत्र को नहीं देख सकता। सुरक्षित संवाद अलग अलग टीमों की जानकारी को जोड़ता है और बेहतर निर्णय संभव करता है। नेता इसके लिए विफलता के बाद यह पूछ सकते हैं कि प्रणाली ने गलती को संभव कैसे बनाया, न कि केवल गलती किसने की। वे प्रश्न पूछकर, अनिश्चितता स्वीकार करके और समस्या उठाने वालों को दंडित न करके व्यवहार का मानक तय करते हैं। पुस्तक यह स्थापित करती है कि नवाचार का आधार केवल प्रतिभा नहीं बल्कि वह वातावरण है जिसमें प्रतिभा सच बोल सके और प्रयोग कर सके। अंत में, ग्राहक पर फोकस से डिजिटल बदलाव को वास्तविक व्यावसायिक मूल्य से जोड़ना। पांचवा आदर्श, ग्राहक पर फोकस पुस्तक के अन्य चार आदर्शों को दिशा देता है। सरल आर्किटेक्चर, बेहतर फ्लो, सतत सुधार और सुरक्षित संस्कृति अपने आप में उपयोगी है लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य ग्राहक के लिए बेहतर परिणाम देना है। पार्ट्स अनलिमिटेड जैसी पुरानी कंपनी का संकट केवल तकनीक पुरानी होने का नहीं है, संकट यह है कि कंपनी बाजार के बदलते व्यवहार, डिजिटल प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की अपेक्षाओं पर समय से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती। जब टीमों का मूल्यांकन केवल स्थानीय लक्ष्यों, बजट या विभागीय अनुपालन से होता है तो वे ऐसे निर्णय ले सकती है जो उनकी रिपोर्ट में अच्छे दिखें पर ग्राहक के अनुभव को खराब करें। पुस्तक इस विभाजन को चुनौती देती है। डेवलपर्स को ग्राहक से दूर रखने पर वे यह नहीं देख पाते कि उनकी देरी, दोष या जटिल प्रक्रियाएं वास्तविक उपयोगकर्ता को कैसे प्रभावित करती है। ग्राहक केंद्रितता का मतलब हर मांग को बिना जांचे स्वीकार करना भी नहीं है। इसका मतलब है समस्या को ग्राहक के परिणाम के आधार पर समझना, छोटे प्रयोगों से सीखना और तेजी से प्रतिक्रिया देना। इस आदर्श में डेटा, उत्पाद और तकनीक की साझी भूमिका उभरती है। व्यवसाय को तकनीकी टीम से केवल आदेश लागू कराने के बजाय ग्राहक मूल्य खोजने में भागीदार बनाना पड़ता है। इसी कारण पुस्तक डिजिटल परिवर्तन को नया सॉफ्टवेयर खरीदने की परियोजना नहीं बल्कि निर्णय लेने और मूल्य पहुंचाने की क्षमता में बदलाव के रूप में प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष में, द यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट विशेष रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, उत्पाद नेताओं और उन व्यावसायिक अधिकारियों के लिए उपयोगी है जो किसी स्थापित संगठन में डिजिटल बदलाव की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। इसे पढ़ने का लाभ यह है कि यह तकनीकी ऋण, टीम निर्भरता और धीमी डिलीवरी जैसी समस्याओं को अलग अलग इंजीनियरिंग दोष नहीं मानता। यह दिखाता है कि ये समस्याएं संगठन की संरचना, प्रोत्साहनों, संवाद और नेतृत्व व्यवहार से जुड़ी होती है। पाठक 5 आइडियाज को जांच के व्यावहारिक ढांचे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वे पूछ सकते हैं कि काम कहां अटकता है, कौन सी निर्भरताएं अनावश्यक है, सुधार के लिए समय किसके पास है, लोग जोखिमों पर खुलकर बोलते हैं या नहीं, और ग्राहक परिणामों तक टीम की पहुंच कितनी है। द फीनिक्स प्रोजेक्ट की तुलना में इसका विशिष्ट योगदान डेवलपर केंद्रित दृष्टिकोण है। जहां पूर्ववर्ती पुस्तक संचालन और व्यापक डेवऑप्स प्रवाह पर अधिक केंद्रित है, वहां यह पुस्तक सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोगों के अनुभव, उनकी स्वायत्तता और उनके दैनिक कार्य की गुणवत्ता को अधिक निकट से देखती है। कथा रूप इसकी अवधारणाओं को याद रखने योग्य बनाता है। हालांकि कुछ पाठकों को पात्रों और समाधान की प्रस्तुति अपेक्षाकृत आदर्शवादी लग सकती है, फिर भी यह कोई विस्तृत तकनीकी कार्यान्वयन पुस्तिका नहीं है बल्कि जटिल तकनीकी संगठनों में बेहतर काम की परिस्थितियां बनाने के लिए साझा भाषा प्रदान करने वाली पुस्तक है। इसी संयोजन के कारण यह डेवऑप्स और डिजिटल परिवर्तन साहित्य में अलग स्थान रखती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जिन किम, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।